بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آل عمران کی 60ویں سے لے کر 63ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگیے محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے پیغمبر، ستیہ وہی ہے جو آپ کے پالنہار کی اور سے ہے، اتہ سندیہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے گا۔ تو ہے پیغمبر، جو کوئی بھی ایشوریہ سندیش وحی دوارا آپ کے پاس آنے والے گیان کے پشچات آپ سے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بحث اور وواد کرے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے پتروں کو لائیں اور تم اپنے پتروں کو، ہم اپنی استریوں کو لائیں اور تم اپنی استریوں کو لاؤ، ہم اپنے آتمیے لوگوں کو اور تم اپنے آتمیے لوگوں کو لاؤ، تو پھر ہم ایشور کے سمکش پرارتھنا کریں اور ایک دوسرے کو ابھیشاپ دیں۔ تتھا جھوٹ بولنے والوں کے لیے ایشوریہ لعنت ارتھات ابھیشاپ نردھارت کریں۔ निसंदेह ईसा मसीह के जीवन की सच्ची कहानी यही है और ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं है और निसंदेह ईश्वर प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। फिर यदि वे लोग सत्य की ओर से मुंह मोड़ लें तो जान लो कि ईश्वर बुरे कर्म करने वालों को भली भांति जानने वाला है।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम भी आपको सदा की भांति पसंद आएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। आज मंगलवार है, उर्दिबेश की 20, शव्वाल की 8 और मई की 10 तारीख। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत हम आपको राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनाएंगे। राजनीतिक चर्चा के उपरांत हम आपको फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान कार्यक्रम सुनाएंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा कुरानी किस्से। तो दोस्तों, ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति का कहना है कि अगस्त के बाद से ईरान का तेल निर्यात दोगुना हो जाएगा। ईरान ने पड़ोसी देशों से स्पष्ट कर दिया, पानी के हक से वंचित करने का प्रयास न किया जाए। यमन का कहना है कि वो यमनी गुटों के बीच वार्ता के विरुद्ध नहीं है। मोदी सरकार की नीतियों के असर दिखने लगे, डॉलरन के मुकाबले में रुपए में ऐतिहासिक गिरावट। और अब आप मरियम मेहरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का कहना है कि तेहरान को अब अपने तेल निर्यात की चिंता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद अगस्त से अब तक तेल निर्यात दोगुना हो चुका है। सोमवार को ईरानी टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में सैयद रईसी ने कहा कि जब से उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला है, तेल निर्यात दोगुना हो चुका है और अब तेल के निर्यात को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ईरानी पेट्रोलियम मंत्री जवाद औजी का कहना है कि वियना परमाणु वार्ता के किसी नतीजे पर पहुंचे बिना और कड़े प्रतिबंधों के जारी रहने के बावजूद ईरान के तेल निर्यात में वृद्धि हो रही है। ईरानी अधिकारी इस दावे को भी खारिज कर चुके हैं कि बाइडेन प्रशासन ने ईरान के खिलाफ लगे प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दे दी है। औजी का कहना था कि दुश्मन ने न सिर्फ प्रतिबंधों में ढील नहीं दी है, बल्कि तेल सप्लाई करने वाले ईरानी टैंकरों को पकड़ने के प्रयास करके अमेरिका ने प्रतिबंधों को और अधिक कड़ा कर दिया है।
ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की की बांध निर्माण परियोजनाओं से ईरान और पड़ोसी देशों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तुर्क सरकार दजला और फुरात नदियों पर बांधों का निर्माण करके सीरिया, इराक, ईरान और यहां तक कि कुवैत और सऊदी अरब के लिए पानी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर रही है। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में जल संकट गहरा रहा है और लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। बांधों के निर्माण से तुर्की में कुर्द शहरों की हजारों साल पुरानी संस्कृति पानी में डूब रही है और इराकी जनता के लिए पानी तक पहुँच मुश्किल होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप इराक में कृषि को अभूतपूर्व नुकसान पहुंच रहा है और रेगिस्तानी इलाकों से उड़ने वाली धूल ईरान समेत पड़ोसी देशों तक पहुंच रही है, जिसका असर हालिया दिनों में देखा गया है। ईरानी विदेश मंत्री ने मंगलवार को तुर्क सरकार से मांग की है कि वो अपनी बांध परियोजनाओं में पड़ोसी देशों के अधिकारों का भी ख्याल रखे। हालांकि तुर्की का कहना है कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही बांधों का निर्माण किया जा रहा है ताकि बिजली का उत्पाद किया जा सके।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हिरमंद नदी में ईरान के पानी के हक के संबंध में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से राजी नहीं है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मंगलवार को संसद की आम बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हिरमंद के विषय पर अफगान अधिकारियों से राजी नहीं है। इसके बावजूद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से होने वाली वार्ताओं में कूटनीतिक और पत्रकारिता दोनों स्तर पर निरंतर ऐलान किया है और बल दिया है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान हिरमंद नदी के पानी पर अपना हक सुरक्षित रखता है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ईरान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती कमिश्नर के बीच होने वाली बैठक की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह बैठक जो कुछ दिनों तालिबान के अधिकारियों के दौर में आयोजित हुई उसके बाद कमाल खान डैम से कुछ पानी छोड़ा गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अफगानिस्तान की ओर से कुछ उल्लंघनों के बावजूद ईरान ने काफी प्रयास किए हैं। ज्ञात रहे कि दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के नीमरुज प्रांत के केंद्रीय शहर जरंज के दक्षिण में 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिरमंद नदी पर कमाल खान डैम बना हुआ है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच 1972 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके आधार पर हर साल हिरमंद नदी का 850 मिलियन घन मीटर पानी ईरान से संबंधित है। हिरमंद नदी के पांचवें अनुच्छेद के अनुसार अफगानिस्तान को अपने हिस्से के पानी से ज्यादा पर कोई हक नहीं होगा चाहे उसे ज्यादा पानी की जरूरत ही क्यों न हो।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मिस्र के सीना मरुस्थल में होने वाले आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस्लामी गणतंत्र ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने सीना मरुस्थल में मिस्री सैनिकों पर हालिया आतंकी हमलों की निंदा की जिसमें अनेक सैनिक मारे गए और घायल हो गए। उन्होंने आतंकवाद के श्राप से निपटने के लिए क्षेत्रीय देशों के बीच निकट सहयोग को आवश्यक करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मुस्लिम देशों में इस प्रकार की बुराई के विदेशी समर्थन से फैलने पर खेद व्यक्त किया। ज्ञात रहे कि शनिवार को स्वेज नहर के पूरब में मिस्री सेना के ठिकाने पर कई साल के बाद बड़ा हमला हुआ है जिसमें एक अधिकारी सहित 11 सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। आतंकवादी गुट दाइश ने हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की है।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। लिबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला का कहना है कि प्रतिरोध ने ग्रेटर इसराइल की योजना के ताबूत पर आखिरी कील ठोंक दी। हिजबुल्ला संगठन के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने सूर और नवतिया में आयोजित होने वाले चुनावी सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक गुट प्रतिरोध के निरस्त्रीकरण के अलावा किसी और चीज को महत्व ही नहीं देते। उनका कहना था कि इस चुनाव में प्रतिरोध देश के आर्थिक संकट को हल करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला अपनी चुनावी कॉन्फ्रेंसों में लेबनानी जनता के मूल मुद्दों को हल करेगा। सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक गुट इस मुद्दे को निम्नतम प्राथमिकता से भी हटाकर देखते हैं। सैयद हसन नसरुल्ला ने कहा कि इन गुटों ने कुछ महीने पहले ही प्रतिरोध के हथियार को अपनी चुनावी जंग के रूप में पेश किया है। उनका कहना था कि वो लोग जो प्रतिरोध का निरस्त्रीकरण चाहते हैं और हिजबुल्ला से छुटकारा पाना चाहते हैं वो फिलिस्तीन में अंतरिम ज़ायनी सरकार के गठन के समय से ही दक्षिण के मुद्दों से अवगत नहीं है।
यमन की नेशनल सल्वेशन सरकार के नेता का कहना है कि वो यमनी गुटों के बीच वार्ता के विरुद्ध नहीं है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार यमन के नेशनल सल्वेशन सरकार की वार्ता का टीम के सदस्य अब्दुल मलिक अल अजरी ने कहा कि किसी भी प्रकार की वार्ता विदेशी दबाव से दूर और उचित माहौल में होनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि सना यमनी पक्षों के बीच वार्ता का विरोधी नहीं है क्योंकि वो राजनीतिक समाधान में शामिल हैं, लेकिन वार्ता दबाव, जंग और विदेशी पक्षों के घेराव से दूर उचित माहौल में होनी चाहिए। यमनी वार्ताकार टीम के सदस्य ने कहा है कि यह बुद्धिमत्ता नहीं है कि वार्ता की मेज को आगे कर दिया जाए और फिर पीछे से बाहरी शक्तियां तलवार खींचे और घेराव जारी रखें। ज्ञात रहे कि एक महीना पहले ही यमन के त्यागपत्र दे चुके राष्ट्रपति मंसूर हादी ने सऊदी अरब के दबाव में अपनी शक्ति और सारे अधिकार राष्ट्रपति परिषद के हवाले कर दिए।
इराक में अल-किफ्ल जेल से दाइश के बड़े सरगनों के फरार की कार्रवाई को नाकाम बना दिया गया। एक जानकार इराकी सूत्र ने सूचना दी है कि इराक के अल-किफ्ल जेल से बड़े आतंकियों के फरार की योजना को विफल बना दिया गया। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक जानकार इराकी सूत्र ने सोमवार को अल-किफ्ल जेल से قیدیوں کے فرار کی ایک بڑی سازش کو بے نقاب بنائے جانے کا بیورا دیا، جنہیں ادھکتر آتنکواد کے معاملے میں موت اور عمر قید کی سزائیں سنائی جا چکی ہیں۔ اس یوجنا کو بڑے پیمانے پر ودیشی سمرتھن پراپت تھا۔ عراقی سوتر نے المعلومہ نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں بابل پرانت کے الکفل جیل میں آتنکواد کے مقدمے میں سزائے موت عمر قید کی سزا پانے والے قیدیوں کے فرار کی سب سے بڑی یوجنا ناکام بنا دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوجنا یہ تھی کہ انیک قیدیوں کو گٹر کا پانی پی کر اپنا سواستھ خطرے میں ڈالنا تھا تاکہ انہیں اسپتال لے جایا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ واسطو میں کئی قیدیوں کو گٹر کا پانی پینے کے بعد بابل پرانت کے ایک ترک اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا۔ سرکشا سوتروں کا کہنا ہے کہ گھٹنا سے پہلے ہی سمبندھت سرکشا سنستھاؤں نے یوجنا اور اس کے بیورے کا پتہ لگا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرار کی یوجنا کے سامنے آنے کے بعد سرکشا بڑوں کو الرٹ کر دیا گیا۔
ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اتہاس کے سب سے نچلے استر پر لڑک گیا ہے اور پہلی بار ایک ڈالر کا بھاؤ 77.50 تک پہنچ گیا۔ سوموار کو شروعاتی کاروبار میں امریکی مدرا کے مقابلے روپے میں 60 پیسے کی گراوٹ درج کی گئی اور یہ ریکارڈ نچلے استر 77.50 پر بند ہوا۔ دن میں کاروبار کے دوران روپیہ 77.52 کے اپنے سروکالین نچلے استر تک گر گیا۔ شکروار کو یہ 55 پیسے کی گراوٹ کے ساتھ 76.90 کے بھاؤ پر بند ہوا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ودیشی نویشک لگاتار بھارت سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں اور اس کے لیے مودی سرکار کی نیتیوں اور دیش میں جاری اسرکشا کے ماحول کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ودیشی مدرا کاروباریوں کا کہنا ہے کہ مدراسفیتی کو لے کر بڑی چنتاؤں کے کارن نویشک جوکھم نہیں لینا چاہتے ہیں۔ کچھ وشیشوں کا ماننا ہے کہ روس یوکرین یدھ کو لے کر انشچتتا اور امریکہ سمیت تمام دیشوں میں بیاج دروں میں بڑھوتری کے رخ کے بیچ روپے میں ایک ایتیہاسک گراوٹ دیکھی جا رہی ہے۔
بھارت کے ہریانہ راجیہ کے نو ضلع کے سانگیل گاؤں میں 8 مئی کو آیوجت ایک ہندو مہا پنچایت نے گو تسکری کے معاملے کی سنوائی کے لیے ایک وشیش ترت عدالت کے گٹھن کرنے کے علاوہ گورکشکوں کے خلاف درج ایف آئی آر کو واپس لینے اور انہیں سشستر उसने शस्त्र लाइसेंस देने समेत कई मांग की है। महापंचायत में कथित तौर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और गोरक्षा दल के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में से मेवात में गो तस्करी और गोवध की समस्या को एक महीने के अंदर समाप्त करने का अल्टीमेटम दिया गया।
کشمیر گھاٹی سے ہندوؤں کے پلان پر بنی ہندی فلم دا کشمیر فائلز کے سنگاپور میں پردرشن پر روک لگائی جائے گی کیونکہ فلم کو ستھانیہ فلم ورگیکرن دشا نردیشوں کے دائرے سے باہر مانا گیا ہے۔ انکو کوم میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سنسکرتی سمودائے اور یوا منترالے تتھا گرہ منترالے کے ساتھ ایک سنیکت وکتو میں سوموار کو کہا کہ ادھیکاریوں نے ہندی بھاشا کی اس فلم کو سنگاپور کے فلم ورگیکرن دشا نردیشوں کے مارکوں سے پرے پایا ہے۔ ادھیکاریوں نے چینل نیوز ایشیا سے کہا ہے کہ فلم مسلموں کے ایک طرفہ اور اکساوے والے چترن اور کشمیر میں چل رہے سنگھرشوں میں ہندوؤں کے اتپیڑن کو درشانے کی وجہ سے ورگیکرن کے دائرے میں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پرتندیتو میں وبھن سمودایوں کے بیچ بیر پیدا کرنے اور ہمارے بہو جاتی اور بہو دھارمک سماج میں ساماجک سامنجس اور دھارمک سدبھاونا کو بادھا پہنچ سکتی ہے۔
یہ سماچار ریڈیو تہران سے پرسارت کیے جا رہے ہیں۔ گمبھیر آرتھک سنکٹ سے جوجھ رہے شری لنکا میں پردھان منتری مہندا راجپکشے کے اپنے پد سے استعفی دینے کے بعد بھی لوگوں کا غصہ تھم نہیں رہا ہے اور دیش پوری طرح سے ہنسا کی چپیٹ میں آ چکا ہے۔ سرکار ویروتی پردرشنکاروں نے ستاداری پارٹی کے 15 سے ادھک نیتاؤں کے گھروں اور دفتروں کو آگ لگا دی، جس میں راشٹرپتی گوٹابایا راجپکشے کا پیترک گھر بھی شامل ہے۔ ہنسک جھڑپوں میں ایک سانسد سمیت 8 لوگوں کے مارے جانے اور 190 سے ادھک کے گھائل ہونے کی بھی خبر ہے۔
سنیکت راشٹر سنگھ میں مہیلا معاملوں کے وبھاگ کے پرمکھ نے طالبان کی اور سے مہیلاؤں کے حجاب کے بارے میں نئے دشا نردیشوں کو لے کر اپنی گہری چنتا جتائی ہے اور کہا ہے کہ پہلے سے ہی سماج میں حاشے پر پڑی مہیلائیں طالبان کے اس فرمان سے سماج سے کٹ کر رہ جائیں گی۔ 7 مئی کو افغانستان کی طالبان سرکار نے مہیلاؤں کے لیے نئے حجاب نیموں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہر سمانت مہیلا کو پورا حجاب پہننا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یا ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। मैं हूं अहमद अब्बास।
राजनीतिक चर्चा।
कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की महत्वपूर्ण तेहरान यात्रा की। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम बात करेंगे इसराइल की ओर से अरब देशों को बेचे जा रहे हथियारों की। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार कर रही है। ये विषय भी कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में शामिल रहेगा। तो चर्चा के विषय यही हैं। आरंभ करते हैं राष्ट्रपति बशार असद के तेहरान दौरे से। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने तेहरान का महत्वपूर्ण दौरा किया। इस दौरे के अनेक संदेश और अनेक उद्देश्य हैं। जायजा पेश कर रहे हैं कायम रिजवी।
सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने ईरान की अपनी यात्रा के दौरान इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई और राष्ट्रपति रईसी से भेंट वार्ताएं की। सीरिया उन अरब देशों में से एक देश है जिसके इस्लामी गणतंत्र ईरान के साथ सदैव ही मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। ये देश प्रतिरोध के केंद्र का महत्वपूर्ण देश है। सीरिया ने अपनी नीतियों को प्रतिरोध के नियमों से समन्वित कर रखा है। यही कारण है कि सीरिया हमेशा से षड्यंत्रकारी अरब देशों, ज़ायोनी शासन और पश्चिमी शक्तियों के निशाने पर रहा है। सीरिया सन 2011 में आतंकी युद्ध का लक्ष्य बना था। अरब देशों और पश्चिमी शक्तियों का समर्थन प्राप्त आतंकी गुटों ने इसी समय सीरिया में आतंकी कार्रवाइयां आरंभ की थीं। ये आतंकी गुट सीरिया की वैध सरकार को गिराना चाहते थे। इस्लामी गणतंत्र ईरान ही वो एकमात्र देश था जिसने आतंकी गुटों के मुकाबले में सीरिया का खुलकर समर्थन किया था। ईरान के घटक प्रतिरोधी गुटों ने भी इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। वास्तव में ईरान और प्रतिरोधी गुटों के प्रयासों ने सीरिया के भीतर आतंकी गुटों के षड्यंत्रों को पूरी तरह से विफल बना दिया। बशार असद से भेंट में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई ने इस संदर्भ में शहीद कासिम सुलेमानी की भूमिका का उल्लेख किया। इस भेंट वार्ता में दोनों देशों ने अपने संबंधों के स्ट्रेटेजिक होने की पुष्टि की। दोनों पक्षों का ये कहना है कि साथ ही हम आर्थिक क्षेत्र में भी संबंधों को मजबूत करने के पक्षधर हैं। इस यात्रा से उस विचार का खंडन होता है कि सीरिया ईरान के साथ अपने संबंधों को कम करके अरब देशों से उनको विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की एक दिन की ईरान यात्रा की तस्वीरें ईरान में उनके जोशीले स्वागत को दर्शाती हैं। विशेष बात यह है कि सीरिया की वर्तमान स्थिति की तुलना पिछले एक दशक की स्थिति से अब नहीं की जा सकती। युद्ध ने सीरिया के मूलभूत ढांचे को बुरी तरह से तबाह कर दिया है जिसके कारण बड़े पैमाने पर उसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। सीरिया आज भी प्रतिरोध के केंद्र में ही मौजूद है। बशार असद ने अपनी यात्रा के दौरान इसी नियम पर आगे भी बाकी रहने पर बल दिया। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि युद्ध में बड़े पैमाने पर क्षति उठाने के बावजूद सीरिया आज भी पश्चिमी एशिया के परिवर्तनों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
इसराइल अरब देशों को हथियार बेच रहा है। इसराइल दरअसल इन देशों को सुरक्षित बनाने का झांसा दे रहा है। जायजा सुनिए सैयद मीसम से।
जब भी इसराइल को घरेलू या क्षेत्रीय संकट का सामना होता है, खासतौर पर जब शांति स्थापित करने की उसकी क्षमता पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो वो तुरंत कुछ अरब देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के मुद्दे को जोर शोर से उछालने लगता है ताकि अपने ऊपर से दबाव को कम कर सके और ये दिखा सके कि वो इस क्षेत्र में अलग थलग नहीं है और उसके साथ कुछ देश खड़े हैं। इसका ये मतलब है कि ज़ायोनी शासन कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को अपने लिए मुक्तिदाता के रूप में देखता है। इस तरह से इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने वाले अरब देश भी जहां फिलिस्तीनी जनता के साथ बड़ी गद्दारी कर रहे हैं तो वहीं ज़ायोनी शासन की बड़ी सेवा भी कर रहे हैं। पूर्व ज़ायोनी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दौर से शुरू होने वाली ये प्रक्रिया नफ्ताली बेनेट के दौर में भी जारी है और दोनों ही इसे अपने लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखते रहे हैं। इसके बावजूद इस तरह के प्रयासों से न केवल ज़ायोनी शासन सुरक्षित नहीं हुआ बल्कि फिलिस्तीनियों और ज़ायोनियों के बीच झड़पों में वृद्धि हो गई है। इन परिवर्तनों के बाद फिलिस्तीनी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरे देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वास्तव में फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से निराश हो चुके हैं और इसी तरह वे अरब देशों से भी निराश हो चुके हैं। यही वजह है कि अवैध अधिकृत इलाकों में फिलिस्तीनी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और शहादत दे रहे हैं। हालिया हफ्तों में फिलिस्तीनियों की अधिकांश प्रतिरोधी कार्रवाइयां 1948 में कब्जा किए गए इलाकों में हुई हैं, जिसने ज़ायोनी शासन को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। पिछले 5 महीनों में इस तरह की 5 कार्रवाइयां हुई जिनमें 18 ज़ायोनियों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं। इस बीच इसराइल ह्यूम ने अरब देशों समेत दुनिया भर के कई देशों को $11.3 बिलियन के हथियार बेचने की खबर दी है। इस तरह से इसराइल अपने हथियारों और विशेष रूप से वायु रक्षा प्रणाली का प्रचार कर रहा है और वो अरब क्षेत्र को अपने हथियारों के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरह अतीत में अमेरिका और पश्चिम के हथियारों से क्षेत्र में शांति की स्थापना में कोई मदद नहीं मिली, उसी तरह से इसराइली हथियारों से भी कोई अपने लिए शांति नहीं खरीद सकेगा।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो सेडेशन लॉ पर खुद ही पुनर्विचार करेगी। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
भारत की केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि उसने देश द्रोह के कानून यानी सेडिशन लॉ पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। सरकार ने शीर्ष अदालत से अपील की है कि वे सेडिशन लॉ या धारा 124A के विरुद्ध दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई न करे और पुनर्विचार की प्रक्रिया के निष्कर्ष की प्रतीक्षा करे। केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा और मानव अधिकारों के सम्मान के संदर्भ में स्पष्ट रूप से अपना दृष्टिकोण रखा है और उनका मानना है कि भारत में जो अपनी स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है औपनिवेशिक कानूनों का कोई स्थान नहीं है। केंद्र सरकार का यू टर्न ऐसे समय में सामने आया है जब उसने पिछले शनिवार को ही उच्चतम न्यायालय में इस विवादित कानून का बचाव किया था और मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले 3 सदस्यीय खंडपीठ से कहा था कि वे इस कानून की संवैधानिक वैधताओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दे। ज्ञात रहे कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और दूसरे पक्षों ने साम्राज्य युग के सेडिशन एक्ट को समाप्त करने की मांग की है। देशद्रोह के इस कानून को पहली बार कानूनी चुनौती नहीं दी गई है। विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद पिछली सरकारों ने भी सेडिशन लॉ का बचाव किया था। पिछली सरकारों की तरह वर्तमान सरकार पर भी निरंतर आरोप लगते रहे हैं कि वे अपने विरोधियों की उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इस विवादित कानून का दुरुपयोग कर रही है। देशद्रोह के इस कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की खींचतान के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में केंद्र सरकार से पूछा था कि वे महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप करने के लिए अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किए गए इस कानून को समाप्त क्यों नहीं कर रही है। ज्ञात रहे कि इंडियन पैनल कोड की धारा 124A को 1870 में थॉमस मैकॉले ने तैयार किया था, जिसका प्रयोग अधिकतर स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध किया गया था। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा यहीं पर समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम कुरानी किस्से।
फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान।
दोस्तों, कार्यक्रम फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना के बारे में बात की थी। आज के कार्यक्रम में हम इस योजना के अन्य आयामों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना को जब तक फिलिस्तीनी राष्ट्र की मांग के रूप में पेश न किया जाए, उस समय तक ये मामला केवल एक आइडिया के रूप में बाकी रहेगा। ऐसे में इसके प्रभावी होने की संभावना बहुत ही कम महसूस होती है। लेकिन अगर यही योजना संगठित ढंग से व्यापक मांग के रूप में पेश की जाए तो ज़ायोनी शत्रु के साथ संघर्ष में इसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा सकती है। इस प्रक्रिया में संचार माध्यमों और वैचारिक केंद्रों के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया में संचार माध्यम और वैचारिक केंद्रों की उपस्थिति जितनी अधिक होगी, उसी अनुपात में ये मुद्दा आम लोगों तक पहुंचेगा। अगर पश्चिमी संचार माध्यम और वहां के वैचारिक केंद्र इस मुद्दे को पेश करें तो फिर इस्लामी जगत के भी संचार माध्यम इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसको अपनी कार्यसूची में सर्वोपरि रखकर आम जनमत के विचार के रूप में पेश कर सकते हैं। अगर ये हो जाता है तो फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आम मांग के रूप में सामने आ सकती है। फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना एक ऐसी स्थानीय सरकार के गठन को पेश करती है जो अरब देशों के साठ गांठ के षड्यंत्र से बहुत दूर है। अरब शासकों की ये इच्छा है कि ज़ायोनी भी खुश रहें और फिलिस्तीनी भी अपनी कुछ मांगों को हासिल करके चुप बैठ जाएं। इस हिसाब से अरब शासक पूरी तरह से फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना के विरोधी हैं। ज़ायोनियों को केंद्र बनाकर अरब पश्चिम गठबंधन ने पहले चरण में फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना पर मौन धारण किया। जब ईरान ने इस योजना को पेश किया और उसके कुछ परिणाम आने लगे तो उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना के आधार और उसके बारे में दुष्प्रचार करके इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अगर फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना वैश्विक मांग के रूप में बदल जाती है तो फिर वे अपनी छवि को अच्छा दिखाने के लिए इसका मौखिक समर्थन करना शुरू कर देंगे, किंतु भीतर ही भीतर उनका प्रयास ये रहेगा कि ये व्यवहारिक ना होने पाए। अब जबकि इसराइल मौजूद है तो जायोनियों से साठगांठ करने वालों के संचार माध्यमों में फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना के स्थान पर अन्य मुद्दों को वरीयता दी जा रही है। उदाहरण स्वरूप इस समय तथाकथित इब्राहिम शांति योजना को अधिक प्रसारित व प्रचारित किया जा रहा है। इस योजना को इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि मानो ये अरबों और इसराइल के बीच समाधान का एकमात्र मार्ग है। हालांकि उनका उद्देश्य अवैध ज़ायोनिस्ट शासन को वैधता दिलवाना और इस्लामी देशों के साथ इसराइल के संबंधों को सामान्य करवाना है। तथाकथित इब्राहिम शांति योजना के मुकाबले में फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना मौजूद है, जो व्यवहारिक होने की स्थिति में इस योजना को विफल बना सकती है। हालात को देखते हुए ये सोचना बिल्कुल गलत है कि इसराइल और अमरीका फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना को स्वीकार कर लेंगे। इसका कारण यह है कि पश्चिम डेमोक्रेसी को केवल एक हथकंडे के रूप में प्रयोग करता है। अपने अवैध हितों को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिम लोकतंत्र का इस्तेमाल करता है। वास्तविकता तो यह है कि वे लोग फिलिस्तीन में लोकतंत्र की स्थापना के पक्ष में नहीं हैं। उनका मुख्य उद्देश्य अवैध ज़ायोनिस्ट शासन को अधिक से अधिक मजबूत करना और फिलिस्तीन के मूल निवासियों को धीरे धीरे उनकी मातृभूमि से निकाल बाहर करना है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों से फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना को व्यवहारिक बनाया जा सकता है। दोस्तों, फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना फिलिस्तीनी प्रतिरोध के लिए ये अवसर उपलब्ध कराती है कि वो उचित ढंग से विश्ववासियों को अपना परिचय करवा सके। वर्चस्ववादियों और ज़ायोनियों का आरंभ से ही ये प्रयास रहा है कि फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध को वे विश्ववासियों के सामने गलत ढंग से पेश करें, ताकि आम लोग उनसे नफरत करने लगें। इसकी स्पष्ट मिसाल ये है कि पश्चिम ने आतंकवादी प्रक्रिया दाइश और तकफीरी आतंकवाद को इस्लामी जिहाद के रूप में पेश किया है। उनका हमेशा से ये प्रयास रहा है कि वे संसार को ये बताएं कि वास्तविक इस्लाम वो है जो दाइश और तकफीरियों के पास है। इसीलिए वे फिलिस्तीनी प्रतिरोध को भी एक आतंकी विचारधारा के रूप में पेश कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने वाले फिलिस्तीनियों के संघर्ष को पश्चिम सीधे आतंकवाद और दाइश से जोड़कर पेश करता है। फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना ने फिलिस्तीनी प्रतिरोध को ये अवसर प्रदान किया है कि ये प्रतिरोध दुनिया को बताए कि वो केवल सशस्त्र संघर्ष का पक्षधर नहीं है, बल्कि उसका अंतिम विकल्प है। वो वास्तव में शांति का ही इच्छुक है, किंतु हथियार को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में प्रयोग करता है। इस संबंध में दूसरा अवसर यह है कि प्रतिरोध दुनिया को यह बताए कि पश्चिम और अमेरिका तो लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, वे जब तक मजबूर नहीं हो जाते उस समय तक फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करती। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो कह चुके हैं कि अमेरिका अब इसराइल तथा जर्मनी के साथ खड़ा है और वो किसी को भी जातीय सफाई की अनुमति नहीं देगा। दूसरे शब्दों में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने ईरान की ओर से पेश की गई फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना को तथाकथित जातीय सफाई की योजना बताया है। इस योजना की एक विशेषता यह भी है कि यह बैतुल मुकद्दस की आकांक्षा रखने वालों को कूटनैतिक मोल तोल की अनुमति देती है। ईरान की ओर से पेश की गई फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जन्म संग्रह की योजना की एक विशेषता यह है कि इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में पंजीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि फिलिस्तीनियों की इस योजना से बहुत से देश, सैकड़ों संगठन और हजारों कूटनीतिक अवगत हैं। राष्ट्र संघ में दर्ज हो जाने के कारण इस प्रस्ताव की कानूनी हैसियत अधिक हो गई है। इस योजना का महत्व उस स्थिति में और अधिक हो जाएगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा फिलिस्तीनियों की स्वदेश वापसी पर आधारित कुछ प्रस्तावों को पारित करेगी, जिसमें फिलिस्तीनियों को अपने भविष्य निर्धारण का अधिकार होगा। फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जनमत संग्रह की योजना या इस्लामी गणतंत्र ईरान की ओर से पेश की गई फिलिस्तीन के कूटनीतिक समाधान की योजना को पहली बार इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने 29 मेहर सन 1379 हिजरी शमसी को पेश किया था। बाद में इस्लामिक क्रांति के वरिष्ठ नेता की इच्छा इस्लामी गणतंत्र ईरान की संसद तथा विदेश मंत्रालय के प्रयासों से 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका पंजीकरण कराया गया। फिलिस्तीनियों का मानना है कि फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जनमत संग्रह की योजना को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से अवैध ज़ायोनी शासन और उसके मित्रों को राजी करने के लिए कड़े प्रतिरोध की जरूरत है। 21 दिसंबर सन 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव का अमेरिका और ज़ायोनी शासन की ओर से विरोध किए जाने के बावजूद विश्व के 153 देशों ने महासभा के इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 5 देशों ने इसके विरोध में और 17 देशों ने इस प्रस्ताव में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 29 नवंबर 2020 को फिलिस्तीनियों के अधिकारों का समर्थन करते हुए सर्वसम्मति से एक अन्य प्रस्ताव पारित किया। इसके हित में 168 और विरोध में 5 वोट पड़े, जबकि 10 ने इसमें भाग नहीं लिया। इस प्रस्ताव ने पुनः फिलिस्तीनियों के अधिकारों की प्राप्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि कर दी। राष्ट्रसंघ की ओर से पारित किए गए प्रस्ताव के भीतर ईरान की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं मौजूद हैं, जैसे फिलिस्तीनियों का उनका अधिकार दिया जाए। ईरान में फिलिस्तीनी मामलों के एक विशेषज्ञ हुसैन कनानी मुकद्दम का कहना है कि अवैध ज़ायोनी शासन के साथ संबंध सामान्य बनाने की प्रक्रिया को इस समय बहुत सी कानूनी और कूटनीतिक चुनौतियों का सामना है। ऐसे में फिलिस्तीन की ओर से पेश की गई फिलिस्तीन के राष्ट्रीय जनमत संग्रह की योजना फिलिस्तीन संकट के समाधान का सबसे अच्छा रास्ता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। कुरानी किस्से।
प्रिय श्रोताओं, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरह इसरा की 56 اور 97 آیتیں کب نازل ہوئی تھیں۔ آشا ہے ہمارا یہ پریاس بھی آپ کو پسند آئے گا۔ مدینہ نگر کے ایک گروہ نے اق نامک استھان پر پیغمبر اسلام کے ساتھ ایک سندھ پر ہستاکشر کیا، اور اس سندھ میں لوگ اس بات پر وچن بند ہوئے کہ وہ پیغمبر اسلام کی جان کی رکشا کریں گے۔ پوتر نگر مکہ میں جب کافروں اور انیک ایشور وادیوں کی اور سے مسلمانوں کو دی جانے والی یاتناؤں میں وردھی ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو مدینہ پلائن کرنے کا آدیش دیا۔ اس کے بعد پوتر نگر مکہ میں رہنے والے مسلمانوں نے مدینہ پلائن کیا۔ اس میں سے کچھ نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا پلائن کیا، جبکہ کچھ نے چھپ کر اور کچھ نے کھل کر اور اکیلے پلائن کیا۔ پوتر نگر مکہ کے قریش قبیلے نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے خطرے کا احساس کیا، اور گروار کے دن 27 صفر 622 عیسوی کو دار الندوہ نامک استھان پر ایکترت ہوئے۔ دار الندوہ اس استھان کا نام ہے جہاں مکہ نگر کے پرتشٹھت لوگ وچار وموش کے لیے اکٹھا ہوتے تھے۔ جب سب لوگ دار الندوہ میں جمع ہو گئے تو سب نے اپنا اپنا سجھاؤ رکھا۔ کچھ نے پیغمبر اسلام کو بند کرنے اور ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی اور پیروں میں بیڑی ڈالنے کا سجھاؤ دیا، جبکہ کچھ نے پرستاو دیا کہ پیغمبر اسلام کو مکے سے باہر نکال دیا جائے۔ اس مارگ سے وہ اپنے مدھ پہلے سے موجود واتاورن اور ایکتا کو دوبارہ پراپت کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام پوتر نگر مکہ سے باہر چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ کیا کریں گے اس سے ان کا کوئی ادیش و مطلب نہیں ہے، کنتو کرودھت کافروں و انیکیشور وادیوں کو اس پرکار کا کوئی بھی سجھاؤ و پرستاؤ پسند نہیں آیا۔ اس آدھار پر وہ اس سے بہتر سجھاؤ کی کھوج میں تھے، اور ابو حکم یا ابو جہل نام کے عرب نے ایک سجھاؤ دیا، اور اس کا سجھاؤ سب کو بہت پسند آیا۔ اس نے کہا کہ ہر قبیلے کا ایک جوان کو چنا جانا چاہیے اور وہ سب مل کر محمد کی ہتیا کر دیں۔ اس پرکار ہر قبیلہ محمد کے خون کا ذمہ دار ہوگا، اور کسی بھی قبیلے کے اندر سمست قبیلوں سے جنگ کرنے کی چھمتا نہیں ہے، اس لیے وہ خون کے بدلے میں بلڈ منی لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ بہرحال ابو جہل کا یہ سجھاؤ سب کو پسند آیا، اور طے یہ ہوا کہ ربیع الاول کی پہلی رات کو اس سجھاؤ کو ویوہارک بنایا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام پر جبرائیل نازل ہوئے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کو کافروں و انیک ایشور وادیوں کی سازش سے اوگت کر دیا۔ اسی پرکار یہ بھی بتا دیا کہ کافر کس رات کو پیغمبر اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل نے پیغمبر اسلام کو نیت سمے پر گھر سے باہر نکل جانے کا آدیش دیا۔ مہان ایشور پوتر قرآن کے سورہ انفال کی 30ویں آیت میں اسی سمبندھ میں کہتا ہے، ہے پیغمبر، آپ اس وقت کو یاد کیجیے جب کافر آپ کو جیل میں ڈال دینے یا ہتیا کر دینے اور مکہ سے نکال دینے کا شڈیانتر رچ رہے تھے۔ وہ یوجنا بنا رہے تھے، اور ایشور نے بھی یوکتی بنائی، اور ایشور بہتر یوکتی بنانے والا ہے۔ بہرحال پیغمبر اسلام دوارا پیغمبری کی گھوشنا کے 13ویں یا 14ویں سال پہلی ربیع الاول کی رات آ گئی، اور یہ وہ رات تھی جس رات کو کافروں نے پیغمبر اسلام کی ہتیا کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا۔ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے بستر پر سو گئے۔ مہان و سرو سمرتھ ایشور نے حضرت علی علیہ السلام کے اس پرتیاگ کی پرشنسا کرتے ہوئے پوتر قرآن کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 اتاری۔ اس آیت میں مہان ایشور کہتا ہے، لوگوں میں وہ ہے جو ایشور کی پرسنتا کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور ایشور اپنے بندوں کے پرتی اتینت دیالو ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سن 30 ہجری قمری میں معاویہ کو جو پتر لکھا تھا اس میں بھی لیلۃ المبیت ارتھات شب ہجرت کی گھٹنا کی اور سنکیت کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس خط میں لکھا ہے، قریش کے لوگ پیغمبر اسلام کی ہتیا کر دینا چاہتے تھے اور ہمیں جڑ سے سماپت کر دینا چاہتے تھے، اور اس بارے میں انہوں نے چنتن منن کیا اور جو کچھ چاہا انہوں نے ہمارے بارے میں انجام دیا۔ بہرحال کافروں نے پیغمبر اسلام کی ہتیا کے لیے ربیع الاول کی پہلی رات کو ان کے گھر کو گھیر لیا اور صبح کو اپنے شیطانی شڈیانتر کو ویوہارک بنانے کے لیے اوچت اوسر سمجھا اور حملہ کر دیا۔ پرنتو انہوں نے پیغمبر اسلام کے بستر پر جب حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ہت پرب رہ گئے اور سمجھے کہ پیغمبر اسلام چمتکاری کے روپ سے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس وقت کافروں و انیکشور وادیوں کو بہت کرودھ آیا اور کرودھ کی حالت میں انہوں نے حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا اور انہیں مسجد الحرام کی اور لے گئے اور پوچھا کہ بتاؤ محمد کہاں ہیں۔ ان کے اس سوال کے جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے پیغمبر اسلام کو میرے حوالے کیا تھا؟ جب کافروں کو اینٹ کا جواب پتھر سے مل گیا تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور پوری طاقت سے پیغمبر اسلام کی کھوج میں لگ گئے۔ قریش کے کافروں کو راستے میں ابو کرج خزائی نام کا ویکتی ملا۔ وہ پیروں کا نشان دیکھ کر یہ پتہ لگا لیتا تھا کہ یہ کس کے پیر کا نشان ہے۔ قریش کے کافروں نے اس سے کہا کہ پیغمبر اسلام کو ڈھونڈنے میں وہ ان کی مدد کرے۔ پیغمبر اسلام کے پیروں کے نشان ان کے گھر میں تھے۔ ابو کرز نے نمونے کے طور پر ان کے پد چنوں کی پہچان کر لی اور کہا کہ یہ محمد کے پیر کا نشان ہے۔ ایشور کی سوگند، یہ وہی پیر کا نشان ہے جو مقام ابراہیم میں ہے۔ اس کے بعد وہ پیغمبر اسلام کے پد چنوں کو دیکھتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں ابو بکر پیغمبر اسلام سے ملے تھے۔ جب اس نے دو پیروں کے نشان دیکھے تو کہا، یہاں پر کوئی آدمی محمد سے ملا ہے۔ اس کے بعد ابو کرز پیغمبر اسلام کے پد چنوں کو دیکھتے دیکھتے غار ہرا ارتھات سور نامہ گفا تک گیا۔ اس کے بعد پیر کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ مہان ایشور کے آدیش سے گفا کے مہانے پر ایک تیتر نے انڈا دے دیا تھا اور وہ اپنے انڈے کی رکھوالی کر رہی تھی، اور مکڑی نے گفا کے مہانے پر جالا بن دیا تھا۔ جب ابو خرز نے یہ درشیہ دیکھا تو کہا، محمد اور ان کے ساتھی یہاں سے آگے نہیں بڑھے ہیں، دو حالت سے خالی نہیں ہیں، یا تو دونوں آسمان میں اڑ گئے ہیں یا زمین میں چلے گئے ہیں، کیونکہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ گفا کے مہانے پر مکڑی نے جالا بن رکھا ہے اور تیتر نے انڈا بھی دے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گفا کے اندر کوئی نہیں گیا ہے، کیونکہ مکڑی کا جالا سرکشت اور وہ پھٹا نہیں ہے، اور گفا کے اندر تیتر اپنے انڈے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کافروں کا ارادہ بدل گیا اور وہ گفا کے اندر نہیں گئے اور پیغمبر اسلام کو پہاڑوں کے آس پاس ڈھونڈنے لگے، اور تین دنوں تک وہ پیغمبر اسلام کو ڈھونڈتے رہے، پرنتو انت میں انہیں وفلتا کا منہ دیکھنا پڑا۔ دوستو، مکہ سے مدینہ پلائن کرنے کے راستے میں کئی دن پیغمبر اسلام کو لگ گئے۔ پیغمبر اسلام جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو مدینہ کے نکٹ قبا نام کی جگہ پر رکے اور وہاں سے حضرت علی علیہ السلام کے لیے پتر لکھا اور انہیں اپنی اور بلایا، اور سوئم پیغمبر اسلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے سب حضرت علی علیہ السلام کی پرتیکشا کرنے لگے۔ پیغمبر اسلام کا پتر جب حضرت علی علیہ السلام کو ملا تو رات کے اندھیرے میں مکہ سے مدینہ پلائن کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی ماتا فاطمہ بنت اسد، پیغمبر اسلام کی پرانا پریہ سپوتری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فاطمہ بنت زبیر، ام ایمن اور مکے کے کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ پلائن کر گئے اور قبا نامک استھان پر پیغمبر اسلام سے ملاقات کی۔ پرنتو جب پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام مکہ سے مدینہ پلائن کر گئے تو مکہ واسیوں کو کٹھن آرتھک استھتی کا سامنا ہوا۔ جو ویاپاری شام ارتھات ورتمان سیریا اور ایران سے مکہ جاتے تھے، جب انہوں نے مکے کی یہ دشا دیکھی تو انہوں نے مکہ کے لیے اپنی ویاپاری گتیویدھیاں سیمت کر دیں۔ اس پرکار کچھ سمے تک مکہ میں ہونے والی آرتھک و ویاپاری گتیویدھیاں مند پڑ گئیں۔ یہی نہیں، مکہ میں اکال پڑ گیا اور کچھ بیماریاں بھی پھیل گئیں، جس کی وجہ سے مکہ کے بہت سے لوگوں کی موت ہو گئی۔ مہان و سرو سمرتھ ایشور کی اور سے یہ ایک پرکار کی چیتاونی تھی، جس کی وجہ سے مکے کے بہت سے لوگوں کے وچار بدل گئے اور وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئے۔ پرنتو وہاں کا واتاورن پیغمبر اسلام کے خلاف تھا اور لوگ ان کے دشمن تھے، اس لیے بہت سے لوگوں کے اندر اپنے ایمان کو اسپشٹ و سارجنک کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے چپکے سے پیغمبر اسلام سے وشا ہونے کے لیے دعا کرنے کا آہوان کیا، تاکہ مہان ایشور دوبارہ مکہ پر اپنی برکت نازل کریں۔ یہ وہ موقع تھا جب پوتر قرآن کے سورہ اسرا کی آیت نمبر 56 اور 97 نازل ہوئیں۔ ان آیتوں میں مہان ایشور کہہ رہا ہے، ہے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایشور کے علاوہ کسی اور کو پوج سمجھ رہے تھے انہیں پکاریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے کسی سمسیا و نقصان کو نہ تو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی دوسرے تک استھانانترت کر سکتے ہیں۔ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ سوئم ایشور کا سامیپ پراپت کرنے کے لیے وسیلہ و سادھن ڈھونڈ رہے ہیں، تاکہ اس کا سامیپ پراپت کر سکیں۔ اس کی دیا کے پرتی آشاوان اور اس کے عذاب سے بھائی بھیت ہیں کہ البتہ آپ کے پالنہار کے پرکوپ سے ڈرنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ انمت دیں، خدا حافظ۔
دوستو، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور اب سمے ہو چکا ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی کا کہنا ہے کہ اگست کے بعد سے ایران کا تیل نریات دو گنا ہوا ہے۔ ایران نے پڑوسی دیشوں سے اسپشٹ کر دیا پانی کے حق سے ونچت کرنے کا پریاس نہ کیا جائے۔ یمن کا کہنا ہے کہ وہ یمنی گٹوں کے بیچ وارتا کے ورودھ نہیں ہے، اور مودی سرکار کی نیتیوں کے اثر دکھنے لگے، ڈالروں کے مقابلے میں روپے میں احتیاط سے گراوٹ ہوئی ہے۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ ہماری یہ سوائیں پر سماپت ہوتی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ Thank you.